नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आरएसएस राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यरत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा प्रदेश की जनता के हक लूट रही है कांग्रेस सरकार। वृद्धजनों की स्वास्थ्य जांच के लिए रोगी मित्र योजना लाएगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप विकास के नाम पर सिर्फ मित्रों और कांग्रेस नेताओं के परिवारों का विकास कर रही है प्रदेश सरकार। और शारदीय नवरात्रों के अंतिम दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने प्रदेशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में भाग लिया। शताब्दी समारोह आरएसएस की विरासत, संघ के सांस्कृतिक योगदान और देश की एकता में संघ की भूमिका को दर्शाता है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आरएसएस राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र सेवा और समाज को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल विजयदशमी का पर्व है, ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
कल विजयादशमी का महापर्व है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि जहां एक ओर देशभर में जीएसटी बचत उत्सव की धूम है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ लाद रही है। नड्डा ने आज एक बयान में इस बात पर हैरानी जताई कि हिमाचल में बनने वाला सीमेंट पड़ोसी राज्यों में सस्ता है, जबकि हिमाचल में यही सीमेंट महंगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार राज्य की जनता के हक लूट रही है। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने झूठी गारंटियों के नाम पर राज्य की आर्थिक स्थिति को बदहाल कर दिया है। उन्होंने प्रदेश की जनता पर करों का बोझ डालने के लिए सरकार की आलोचना की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार वृद्धजनों की स्वास्थ्य जांच के लिए रोगी मित्र योजना लाएगी। वृद्धों का ख्याल रखना और उनका सम्मान करना सरकार का दायित्व है और सरकार इसे बखूबी निभा रही है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर शिमला के रिज मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसके तहत सरकार अनाथ बच्चों, एकल नारी और बुजुर्गों के लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के चौड़ा मैदान से 14 नए अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर होमगार्ड के 700 पदों को जल्द भरे जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन पदों को भरने से राज्य में आपातकालीन सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेवा और सुशासन के मंत्र के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज भी इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने वैश्विक साझेदारियों को मजबूत किया है और भारत को विश्व पटल पर एक मजबूत पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक भागीदारी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। इससे देश वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरा है। ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव एक बहुध्रुवीय विश्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे विकासशील देशों की आवाज सुनी जा सके।
पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली, तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। हमारी प्राथमिकता थी कि G20 को ग्लोबल स्केल पर समावेशी और ह्यूमन सेंट्रिक बनाया जाए। G20 का फोकस हो डेवलपमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसी उद्देश्य से हमने इस वर्ष जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। इसका नतीजा रहा कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ के विषयों पर हमें सबकी सहमति हासिल करने में कामयाबी मिली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं ने भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाया है और साझेदारियों को सुदृढ़ किया है। बहुध्रुवीयता और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक हितधारक के रूप में नहीं बल्कि बहुपक्षीय भागीदारी के संरक्षक के रूप में भी उभरा है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने 10 झूठी गारंटियां देकर प्रदेश की सत्ता हथियाई है और आज मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री व विधायक जनता से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि पहली ही कैबिनेट में 1,00,000 सरकारी नौकरियां देने का वायदा करने वाली कांग्रेस को वोट चोरी जैसा अभियान चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के नाम पर सिर्फ मित्रों और कांग्रेस नेताओं के परिवारों का विकास हो रहा है जबकि जनता छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तरस रही है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि GST सुधारों से बाजार में वस्तुओं की कीमतें कम हुई है और इससे आम जनता पर वित्तीय बोझ कम हुआ है। उन्होंने आज ऊना शहर में दुकानदारों के बीच GST सुधारों को लेकर आयोजित रोड शो के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल में GST सुधारों का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने सीमेंट डीजल और पेट्रोल पर भारी टैक्स लगा दिए हैं। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि केंद्र से भारी राहत मिलने के बावजूद सुक्खू सरकार राज्य के लोगों को परेशान कर रही है। शारदीय नवरात्र के 9वें व अंतिम दिन आज मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान लोगों ने कन्या पूजन का अनुष्ठान किया और देवी दुर्गा से आशीर्वाद व समृद्धि की प्रार्थना की। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में आज सुबह से ही माता के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। इन नेताओं ने अपने संदेश में कहा कि विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये पर्व न केवल हमारे नैतिक मूल्यों और परंपराओं को मजबूत करता है बल्कि ये संदेश भी देता है कि बुराई का अंत हमेशा निश्चित है। सेना प्रशिक्षण कमान आरट्रैक शिमला ने आज अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। आरट्रैक के GOC इनसी लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने आरट्रैक के 18 जवानों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए GOC इनसी प्रशंसा प्रमाण पत्र और 3 प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को वर्ष के लिए वित्तीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने इस मौके पर कहा कि देश विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आरट्रैक देश की सेना को परिवर्तन का दशक और तकनीकी आत्मसात का वर्ष पहल के अनुरूप कार्य कर रहा है।
आरट्रैक 35 साल से एक लंबे रास्ते से चलते आ गया है। हर एक जो मेंबर आरट्रैक का है वो प्रशंसनीय है क्योंकि उसने हर एक ने कंट्रीब्यूट किया है हमें जिस मुकाम पर आज आके हम खड़े हैं उस पर खड़े करने के लिए। फाइनली मेरा मैसेज हमारे सारे सदस्यों के लिए है, हर एक कड़ी मेहनत और लगन करे जो टास्क दिया गया है। याद रखो बूंद बूंद बनकर सागर बनता है और हम जिस मुकाम पर है वो मुकाम हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने काम किया। हमें अपने देश को अपनी आर्मी को और आरट्रैक को आगे बढ़ाना है।
प्रदेश में BSNL की 5G सेवा अगले वर्ष से शुरू हो जाएगी। निगम के हिमाचल प्रदेश दूर संचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक चरण सिंह ने आज शिमला में BSNL की रजत जयंती के अवसर पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस सेवा के लिए BSNL के मौजूदा स्वदेशी 4G मोबाइल टावरों को अपग्रेड किया जाएगा। इन टावरों का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया था। चरण सिंह ने कहा कि 4G मोबाइल टावर राज्य के लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी, भरमौर और तीसा के क्षेत्र के दूरदराज के गांवों में 4G कवरेज सुनिश्चित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आरएसएस राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यरत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा प्रदेश की जनता के हक लूट रही है कांग्रेस सरकार। वृद्धजनों की स्वास्थ्य जांच के लिए रोगी मित्र योजना लाएगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप विकास के नाम पर सिर्फ मित्रों और कांग्रेस नेताओं के परिवारों का विकास कर रही है प्रदेश सरकार। और शारदीय नवरात्रों के अंतिम दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने प्रदेशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।